ओम शांति। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए तीन बहुत सुंदर धारणाएं हैं, उन पे चर्चा भी करेंगे और प्रैक्टिस भी। साक्षी भाव, समर्पण भाव और क्षमा भाव, चौथा शुभ भावनाएं भी हैं। ये चारों साक्षी भाव, समर्पण भाव, क्षमा भाव और शुभ भावनाएं चारों हमारी स्थिति को महान बनाने में सबसे बड़ा काम करती हैं। स्थिति महान, इसका अर्थ है मन शांत, व्यर्थ से मुक्त, उलझनों से मुक्त, तनाव से मुक्त। एक बहुत सुंदर स्लोगन जिस पर पहले भी हमने चर्चा की है वो सभी याद करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। चित्त को शांत कर दो तो समस्याएं स्वतः ही शांत हो जाएंगी। ठीक है। और चित्त को शांत करना सहज काम है या बड़ा है? थोड़ा सरेंद्र, बड़ा काम है, सहज है, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन हमारे पास सद ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है। अपने मन की उलझनों को शांत करना, इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। इसमें ये तीनों बातें बहुत बड़ा काम करती हैं, चारों बातें। साक्षी भाव में ड्रामा का पूरा ज्ञान, उसको हमें यूज करना है। और एक बहुत अच्छी धारणा के द्वारा चित्त को शांत कर लेना है। आप उस पे बहुत अच्छा काम करें जीवन में। एक दिन में ये काम नहीं होता, इसको याद रखें और इस पर प्रैक्टिस करते रहें। जीवन में कुछ बातों को हमें स्वीकार करना ही है। सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है या नहीं? माताएं क्या समझती हैं? बहने, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना ही होगा, नहीं तो परेशानी होती रहेगी। उदाहरण दें, किसी ने फोन किया, एक माता को तीन बच्चे, माता अकेली अब बीमार, घर से निकाल दिया। उसकी लड़की सेंटर में है, कहा वहीं जाके रहो तुम भी, क्यों आती हो हमारे पास? तीन बच्चे जिसके जन्म के लिए उसने भगवान से बहुत भक्ति की थी, हे प्रभु तीन लड़के दे दो। ये नहीं कहा था चरित्रवान दे दो, लड़के दे दो। दे दिए। क्या करे वो अब? बहुत परेशान, बहुत परेशान, संकल्प परेशान कर रहे हैं, तो बीमारियां बहुत बढ़ गई। क्योंकि लड़कों से तो कोई भी माँ ये कामना नहीं करती ना, तीन हो, तीनों ही उसको रखना ना चाहते हो, भले ही उसके संस्कारों की कुछ गलती हो सकती है, वो कड़क हो, कोई उसे पसंद न करता हो, कभी कभी ये भी होता है। बच्चों को तो हम दोष दे देते हैं, पर कभी कभी दोष माँ का भी होता है, है? माताओं को बुरा ना लगे, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि बच्चे हाथ जोड़ते हैं कि दूर भले, शांति से रहो और रहने दो। ऐसी सब बातों को स्वीकार करके चित्त को शांत कर देना चाहिए। कुछ पास्ट की ऐसी बातें हैं जो पास्त हो गई हैं पर मन पर बुरा प्रभाव डाले हुए हैं, कई लोग उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, उन्हें हल्का करना है, वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, इसलिए चित्त को शांत कर दें। वर्तमान में भी जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, हम परेशान रहें, इससे अच्छा चित्त को शांत करके मन की शक्तियों को बढ़ाएं। तो मन की शक्तियां सभी समस्याओं को हल कर देंगी। सभी इस पे ध्यान दें, अपने अपने जीवन पर एक नजर डालें, कहां कहां मेरा मन भागता ही नहीं, अशांत होता है, उत्तेजित होता है, किसी ने कुछ बहुत बुरा किया है, उसको हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, मन में क्रोध की अग्नि जलती रहती है, शक्तियां उसमें जल के नष्ट होती रहती हैं। तो अगर अपने से भी कुछ ऐसा हो गया है, अपने को क्या करें? कईयों से ऐसा हो गया, अपने से कुछ गलतियां हो गई, वो उन्हें चैन से नहीं रहने देती, क्या करेंगे? क्षमा याचना नहीं, अपने को भी क्षमा कर दें, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना क्षमादान और क्षमा याचना। अपने को भी क्षमा, भाई थोड़ी आवाज बढ़ाना, अपने को भी क्षमा। सभी विचार करेंगे, बहुत केस ऐसे आते हैं जिसमें मनुष्य अपने द्वारा की गई गलतियों को भूल नहीं पाता है। अब उन गलतियों को तो अब ठीक नहीं किया जा सकता, उनके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है, गलती तो हो गई पर उनका जो प्रभाव मन को अशांत कर रहा है उसको नष्ट करने के लिए उसे स्वीकार करके आगे बढ़े। कोई पाप भी हो गया है तो आगे हमारे सामने पुण्य करने का रास्ता बहुत लंबा है, रोज हम पुण्य करें तो पुण्य की शक्ति उस पाप के प्रभाव को धीमा कर देगी, ढीला कर देगी। इस पे भी सब ध्यान देंगे। साक्षी भाव की 5 बातें निकालेंगे, वो आपको सुनानी है, जिनकी आज से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी। बाबा जो हमें काम देकर गए हैं ना, 2 निर्विघन, याद करो, निर्विघन जीवन और व्यर्थ से मुक्त, क्रोध से मुक्त, उनमें भी ये बहुत काम करेगी। मन शांत तो विघ्न भी शांत होंगे और अगर आएंगे भी तो जल्दी शांत हो जाएंगे। 5 पॉइंट मैं शुरू करता हूं, पॉइंट्स नहीं, साक्षी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है जिसमें हम केवल देखते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं, जो कुछ हम देख रहे हैं केवल दृष्टा है। तो बाबा का ये महावाक्य इस बात को क्लियर करता है, जैसे मैं ऊपर बैठकर इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखता हूं वैसे ही तुम भी देखो। ये है बाप समान बनने की बहुत अच्छी विधि। हम बाबा की स्थिति पर ध्यान दें, ऊपर बैठा है नीचे देखता है, सब खेल वही चल रहा है जो कल पहले चला था, नथिंग न्यू, कुछ सोचने की मार्जिन नहीं है। सोचें, बाबा की स्थिति पर ध्यान दें, वही हमें भी बनानी है, क्योंकि हमारी परेशान होने से, चिंतित होने से ये ड्रामा तो बदलेगा नहीं। ड्रामा किसने बनाया, लोगों का प्रश्न होता है, ये प्रश्न विदेशी जब आने लगे हमारे पास तो 2 प्रश्न बहुत पूछते थे, श्री बाबा ऑलमाइटी है, वो इस ड्रामा को बदल सकता है? सकता है, उनका प्रश्न होता था वो बदल सकता है, और दूसरा ये था कि दोनों बनाया किसने, कभी तो बना होगा, आखिर बना के घुमा दिया हो, घूमते रहो, तो बनाया है हर एक्टर के कर्म और फल ने। ये सर्किल कैसे चलता है, कर्म और फल, कर्म और फल, फल फिर कर्म की ओर प्रेरित करता है, कर्म का फिर फल मिलता है, और इस तरह ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। चेंज कर सकता है भगवान इसको? उत्तर है कर सकता है। तो मैं कहता था कर तो सकता है, परंतु वो करता नहीं। क्यों नहीं करता है? नहीं, इसका उत्तर बाबा ने मुरली में भी दिया। फिर बाबा को ड्रामा संपूर्ण रूप से प्रिय है, इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं रही जिसे ठीक किया जाए। वही किसी आर्टिस्ट ने, पेंटर ने कोई चित्र बनाया हो, उसमें कहीं गलती रह गई हो तो ठीक करेंगे ना, और वो परफेक्ट हो तो उसे ठीक करने जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जब ड्रामा है ही एक्यूरेट तो उसे बदलने की मार्जिन ही कहाँ, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो बदल सकता है, पर बदले क्यों, उसकी जरूरत नहीं है। अब ड्रामा की 5 पॉइंट्स हम निकालेंगे जिसका हम अभ्यास करके अपने को साक्षी भाव में स्थित करेंगे। 2-3 बातों की चर्चा हम सदा ही करते हैं। बोलो, महेश भाई शुरू करता है। जो कुछ हो रहा है अच्छा और कल्याणकारी, बात गोई होती है, अच्छा और कल्याणकारी, क्योंकि सब जगह ये ड्रामा कल्याणकारी नजर नहीं आता, लगता है तो सारी गड़बड़ हो गई, पर कल्याणकारी होता है, उसे देखने के लिए विशाल आंखें चाहिए। दूसरी पॉइंट मैंने बताया, नथिंग न्यू, पीछे हम इसकी चर्चा कर चुके, इसको भी जोड़ेंगे। अब वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, तो नो क्वेश्चन, बहुत अच्छी स्थिति है, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। तीसरी पॉइंट, विनोद भाई बड़े बड़े पूर्वज आज छुप छुप के बैठ गए, रामनिवास भाई बोलो है? नहीं, ड्रामा, ड्रामा की बात हम कर रहे हैं। हरगोविंद, हाँ वो भी ठीक है, पर इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ये बात हमें चिंताओं से और पर चिंतन से मुक्त करेगी। ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, पार्ट के साथ अपना अपना भाग्य भी है। दो वो पॉइंट जिनकी हम सदा चर्चा करते हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, यहां भी नो क्वेश्चन, और उसी से जुड़ेगी, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, इसलिए यहां किसी का कोई दोष नहीं। इनसे चित्त शांत होगा, बिल्कुल अपने चित्त को हमें शांत करना है। मुझे भी जो पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में, वो अच्छा है या पसंद नहीं, हर एक्टर को अंडरलाइन करेंगे इसे सभी, यानी मुझे, सब अपने से बात करें, मुझे जो इस ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है वो परफेक्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मुझे उसको एंजॉय करना है। ठीक है, क्या समझते हैं बूढ़ी माताएं, क्या सोचते हैं, बूढ़े हो गए तब ये अच्छा पार्ट मिला, जवान होते मिलता कितना अच्छा था, नहीं ना? जो जब जहां जैसे किसी को पाठ मिला है वो बहुत सुंदर है, उसका आनंद लें, उसमें संतुष्ट रहें। अपने को भी एक्टर देखें, अपने पाठ को भी देखें, और मेरा पाठ बहुत सुंदर है, मेरा भाग्य बहुत सुंदर है, ये फीलिंग अपने को दें। भाग्य सुंदर है या नहीं बाबा के बच्चों का? कोई कोई महसूस करते हैं नहीं है, परंतु इस महसूसता को खत्म करेंगे जिन्हें भगवान मिला हो, जिन्हें रोज भगवान पढ़ाता हो, जिनसे बात करने के लिए रोज वो स्वयं आता हो, उनसे भाग्यवान कोई नहीं। आज की मुरली सुनी सबने? मैं तो सुन रहा था, हमारे यहाँ वो दीदी एक नई आई है, वो पढ़ रही थी, बिल्कुल उसने पढ़ा भी ऐसे ही डायरेक्ट, भगवान हमसे बात कर रहा था आज, बहुत एंजॉयमेंट था उसने। तो अगर हम अपने को ये संकल्प देकर रखेंगे, मैं हीरो एक्टर, बहुत भाग्यवान, तो भाग्य चमकने लगेगा, भाग्य चमकेगा। अगर हम ये परेशान रहते हैं मेरा पार्ट ड्रामा में अच्छा नहीं है, इसका बहुत अच्छा है, काश मुझे भी इसका पार्ट मिल जाता, सीमा मैन सब आपकी तरह आई सर्जन बन जाते तो आंख ठीक कराने कौन आता? सब तो नहीं बन सकते ना, वैरायटी ही तो ब्यूटी है ना इस ड्रामा की, विभिन्नता इसकी सुंदरता है। तो मेरा पार्ट बहुत सुंदर है, पसंद है ये बात सबको? कुछ लोगों को नहीं पसंद है, वो सोच रहे मेरा थोड़ा ही सुंदर है, मैं तो ऐसी कम पढ़ी लिखी, गरीब घर में जन्म ले लिया, क्या कुछ भी नहीं, मेरा थोड़ा ही अच्छा है। सबका पार्ट सुंदर है, सबका भाग्य सुंदर है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। और अब हम जहां भी गरीबी में, कम पढ़े लिखे, छोटी मोटी नौकरी करते हो, सेवाओं में कहीं भी हो, वहीं से कहां जा सकते हैं? अध्यात्म के शिखर पर, अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए न किसी पद की जरूरत है, न धन की जरूरत है, वो तो खुद को पहुंचना है। अगर हम इस चीज को रियलाइज करके अपने में मगन हो जाएं, बाकी सभी चीजों को छोड़ दें, केवल ज्ञान योग में लग जाएं, तो ज्ञान योग के मार्ग पर हम ऐसे बन सकते हैं। कैसे, वो लक्ष्य फिर से याद दिला दूं, सभी याद कर लें, कैसे बनना है कि हमें संसार को बहुत कुछ देना है, हम दे सकें। आज मैं अपनी डायरी खोल रहा था तो अचानक एक बात लिखी, उसमें आ गई बाबा की मुरली की, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाओ तो अनेक आत्माएं तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी, अट्रैक्शन हो जाएगा, घूमेंगी क्यों? कुछ लेने के लिए। तो सभी ये महान लक्ष्य अपना फिर से रिवाइज कर लें, हमें ऐसा बनना है कि हम संसार के काम आ जाएं। बाबा ने कभी कहा है, याद हो सबको, आबू रोड से और आबू तक पैदल चलने वालों की भीड़ लगेगी, कभी ये भी कहा मुंबई से भीड़ लगेगी आबू तक, वो तो गाड़ियों की लग सकती है पर पैदल यात्री भी बहुत आएंगे। किसके पास आएंगे? किसके पास, धरती को देखने या धरती के चेतन सितारों को देखने, और उनसे बहुत कुछ लेने के लिए। तो सभी अपने को ऐसा योग्य बनाएंगे हम दे सकें, लेने की कोई इच्छा नहीं। तो इस तरह हम साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, सब इस पे बहुत ध्यान देंगे, रोज एक दो बार खड़े होकर संसार के खेल को देखना, कितना सुंदर खेल चल रहा है, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। हर आत्मा इसमें अपना अपना पार्ट हो जा रही है, बाबा भी इसे साक्षी होकर देखता है। अनेकों बार हम इस खेल में इसी तरह घूमे हैं, कैसे अच्छे एक्टर हैं हम, बार बार ये सुंदर पार्ट हमको मिला है। ऐसे एक दो बार सारे दिन में कभी भी इस संसार को केवल दृष्टा बनकर देखना। देखो लोगों ने तो कह दिया था, शंकराचार्य से शुरू हुई ये मान्यता, जगत मिथ्या है। बाबा ने बहुत अच्छी हंसी की बात की थी एक बार, तब बाबा जरा खुले शब्दों में बोल देते थे, कहा कहता है जगत मिथ्या है, मुर्दे खड़े कहाँ हो। उसको कहा मुर्दे, उसको मुर्दे कहा बाबा ने, तुम खड़े कहाँ हो अगर जगत ही मिथ्या है। अगर जगत मिथ्या है तो जगत का क्रिएटर भी मिथ्या हो गया या वो सत्य होगा? जो परम सत्य है उसने मिथ्या जगत कैसे रच दिया? ये तो स्वप्न मात्र है, कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ स्वप्न देख रहे हैं हम। कैसी गलत मान्यताएं लोगों ने प्रचलित कर दी। अद्वैत सिद्धांत के ये मत हैं, शंकराचार्य ने जिसका ज्यादा प्रचार किया था, तो ये सब नहीं है। हम इस संसार के खेल को साक्षी होकर देखेंगे। दूसरा है क्षमा भाव, शुभ भावनाएं, अपने को भी क्षमा कर दें, अभी कर दो, कुछ भी हो गया हो उसकी छाया को मन से हटाकर आनंदित करें अपने को। ऐसे नहीं पास्ट में जी रहे हो, जो भी पास्ट में जीते हो वो अपने को उससे मुक्त करें, जरा बाहर निकालें। जो कुछ भी हो गया, मान लो बिल्कुल खराब हो गया था, लेकिन अब तो हम भगवान के पास हैं, उसकी शीतल छाया में हैं, उसने हमें अपनी छाया में लेकर हमारे चित्त को शीतल कर दिया है, हमें हो जाना चाहिए। उन सबको भी क्षमा कर दें जिन्होंने हमसे कुछ किया है। दूसरी बात ये हमारी मान्यताएं हैं, क्षमा संस्कृत शब्द है, क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वीरों का आभूषण है, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो बहुत महान हैं, वही दूसरों को क्षमा करते आए हैं। भले इतिहास वाले ये मानते हैं कि क्षमादान ने भारत को कष्टों में ले आया, ऐसी कई कहानियां हैं इतिहास में कि एक शक्तिशाली राजा ने दूसरे को क्षमादान दिया और उसने उस क्षमादान को मानता न मानकर उसको फिर नष्ट कर दिया। ऐसे अपकारी लोग भी, कृतघ्न कहते हैं इन्हें, ऐसे हुए हैं इतिहास में। लेकिन अब हम युद्ध करने में नहीं लगे हुए हैं, अब हमें किसी को जीतना नहीं है, अब हम अपनी स्पिरिचुअल उन्नति में लगे हुए हैं, ईश्वरीय शक्तियों को अपने में भरने में लगे हुए हैं। वो बात अलग है कि हम राजाओं के लिए कुछ कहें, हम अपने लिए बात कर रहे हैं, हम उन सब को क्षमादान दे दें जिन्होंने हमारे लिए बुरा किया है। कर सकते हैं क्षमा उनको या नहीं, या ये काम बड़ा भारी है? कईयों के लिए भारी होता है, जब तक बदला न लें चैन नहीं पड़ती है, ये भी मन की स्थिति है। बदला ले लेते हैं तो सुखी हो जाते हैं। जैसे छोटी सी बात, किसी ने दो गलत शब्द बोल दिए हो हमें और हमारे अंदर वो चलता हो, हम चार बोल दें बहुत खुश रहेंगे, योग भी अच्छा लगेगा उसके बाद। अगर न बोलें तो वो दो शब्द आते रहेंगे, योग भी नहीं लगने देंगे। तो ये ह्यूमन मेंटेलिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें शक्तियों की जरूरत है कि हम उन संकल्पों को शांत करके क्षमादान कर दें। लेकिन हमें क्षमादान तो करना ही है, क्षमा याचना भी कर लें जिनको हमने कष्ट दिया है। बहुत अच्छे अच्छे केस ठीक हुए हैं, इससे संबंधों में मधुरता आ गई है, जहाँ संबंध बहुत कटु थे, विषैले थे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। मुझे ऐसे फोन आते ही रहते हैं, दो चार दिन में एक तो आता है, एक पति पत्नी का आया कि हमारी शादी तो हुई है पर हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते। बहन जी बात कर रही थी, मैंने कहा तुम तो देखना चाहती होगी, अब ज्ञान लिया है थोड़े समय से, मैं भी देखना नहीं चाहती, ये मरे तो मैं सुखी हो जाऊं। कोई सोचता है ये मरे तो मैं सुखी हो जाऊं। अभी ज्ञान लिया, शांत बहुत हो गए तो ज्ञान लिया, तो इसमें क्या काम कर रहा है, पूर्व जन्मों की कटुता, वैर भाव जो चला आ रहा है अब तक, कष्ट पहुंचाया है एक दूसरे को, तो उसकी सूक्ष्म फीलिंग अब ऐसी हो गई है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। माँ बेटे में ये स्थिति कहीं कहीं दिखाई देती है, बाप बेटों में ये स्थिति दिखाई दे रही है, जहाँ संबंधों में बहुत अपनापन होता है। बिल्कुल माँ तो अपने बेटे को, छोटा बेटा है तो कैसे, दिल का टुकड़ा, बिल्कुल वही सब कुछ है ऐसा मानती है, लेकिन ऐसा भी केसेस देखे, देखना नहीं चाहती, इसको हटाओ मेरे पास से, ये कहां से आ गया हमारे घर में। पूर्व जन्मों की कटुता, इसमें क्षमा कर देना और क्षमा याचना कर लेना, ये हमारी मान्यता रहेगी। इस पर भी सब बहुत ध्यान देंगे, हम सब महान आत्माएं हैं, तो हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बल देती हैं, इस पर भी बहुत ध्यान देना है। हमारी अशुभ भावनाएं दूसरों का बहुत नुकसान कर देती हैं, और दूसरों के नुकसान के साथ हमारा भी नुकसान होगा। ये नहीं कि हम किसी के लिए कटुता मन में बनाए रखें और उसको ही नुकसान होगा, हम खुश रहे हैं, हमें ज्यादा होगा। शुभ भावनाएं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। हम अपने लिए शुभ भावनाओं पे जरा कम चर्चा करते हैं, इसको बाबा दूसरा नाम देते हैं, अपने लिए शुभ चिंतक। हम बाबा के पास आ गए, शुभ चिंतक क्या है, इस तरह चिंतन करें, हम बाबा के पास आ गए तो हमें उससे सब कुछ ले लेना है। जो समर्पित हो गए, बहुत सारे आप में से अपना घर छोड़ के यहाँ बीके कॉलोनी में आ गए, त्याग है ना, अपने घर से बाहर निकल जाना त्याग है, नई जगह सेट होना बहुत बड़ी बात होती है, कैसे लोग मिले, कैसे पड़ोसी मिले, कैसा काम धंधा मिले, छोड़कर आ गए आप सब, त्याग किया है। अब ये शुभ चिंतन अपने लिए करेंगे, हम त्याग करके आ गए तो हमारा त्याग निष्फल न जाए। नहीं भाई साहब बैठे हैं बिजनौर वाले, बहुत अच्छा इनका भी त्याग है भाई बिजनेस का, देखो बिल्कुल सब कुछ छोड़ के ज्ञान योग की साधना करने यहाँ आ गए हैं। क्या नाम है आपका, है निर्विकार, वंडरफुल नाम है भाई, आपकी मान्यताओं के अनुकूल है, निर्विकास, वेरी गुड। कोई कई नाम भी ऐसे रखते हैं, बहनों के नाम पवित्रता, इतना अच्छा नाम होता है। तो हमारा त्याग निष्फल न जाए, चिंतन करेंगे, ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ आए और यहाँ किसी उलझनों में उलझ गए। जैसे सबके लिए युगों से हम भगवान को बुलाते थे, इतना ही चाहते थे दर्शन दे दो, अब वो दर्शन तो छोड़ो, हमारे पास आ गया, हमारे साथ रह गया, हमारा हो गया, और फिर हम उसका सुख न लें। कईयों को ये होता है, भगवान को देखने की इच्छा थी सो देख लिया, बस पूरा हो गया, ऐसा नहीं, देखने के बाद उसके सुखों में, उसके आनंद में आनंदित रहना, इसका बहुत महत्व है। तो सब ने त्याग किया है, शुभ चिंतन रखेंगे अपने लिए, हमें बाबा से सब कुछ पा लेना है, ठीक है, पसंद है, खूब चिंतन करना इस पर। दूसरों के लिए भी शुभ भावनाएं, वैसे तो ज्ञान लेने के बाद सभी ज्ञानी आत्माओं के मन में अपने संबंधों के लिए, अपने और फ्रेंड सर्किल के लिए अच्छी भावनाएं हो ही जाती हैं। सब चाहते हैं जैसे हमारा प्रभु मिलन हुआ, ये भी सब बाबा के पास आ जाएं। इस भावना को बढ़ाते रहना है, हमारी भावनाएं दूसरों को बहुत मदद करेंगी। ये भूलना नहीं बाबा का महावाक्य, तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं, क्योंकि हम पूर्वज हैं, इष्ट देव देवियां हैं। हमारी श्रेष्ठ भावनाएं, हमारे सुंदर संकल्प दूसरों को बहुत बल देते हैं, उन्हें माया से सुरक्षित रखते हैं, उन्हें समस्याओं में बचाते हैं, बहुत बचाते हैं। तो बहुत अच्छा, मुझे याद आ रही आज की घटना, हमारी वहां जो बहन आई है वो सुना रही थी कि कोई व्यक्ति आया, शुरू में बाबा जब थे तो जब उसको कहा भगवान आता है, उसने कहा भगवान को आने क्या जरूरत है, वो तो सर्वशक्तिमान है, ऊपर बैठ के ही सब कुछ कर सकता है। तो मुझे ख्याल आया जब वो कह रहा था ऊपर बैठ के, तो उससे पूछ लेती ऊपर कहाँ बैठ के, वो तो सर्वव्यापी मानते हैं ना, तो ऊपर कहाँ बैठ के, तो मानता नहीं था। तो ये बहन क्लास करा रही थी भाई बहनों को, वो भी आ बैठा, तो उसको दिखने लगा ऊपर से शिव बाबा इसके तन में आ रहा है, ऊपर से महाज्योति उतर रही इसके तन में, वहीं पिघल गया, समर्पित हो गया, बाबा का बन गया। तो मैं सोच रहा था आगे चलकर जब बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी यूज कर देगा तो अनेक साक्षात्कार होते रहेंगे लोगों को। तो हम साक्षात्कार करने वाले बनेंगे या कराने वाले, बहुतों को ये भी इच्छा है हमें हो जाए, करेंगे भी बहुत लेकिन दृष्टि से कराएंगे भी बहुत। समर्पण भाव, ये बात मुझे इसलिए याद आई कि हम अपने चित्त को शुभ भावनाओं का भंडार बनाएं, अखुट खजाना हो हमारे पास, जो भी आए हमसे प्यार शुभ भावनाएं अपनापन लेता ही जाए। समर्पण भाव, आज ही आप सभी एक सुंदर अभ्यास का अनुभव प्राप्त करना, योग करें, तीन बार संकल्प कर लेना बाबा सब कुछ आपका, मेरा सब कुछ तेरा, और देखना कितना सुंदर योग लगता है, मेरा सब कुछ तेरा। दूसरी प्रैक्टिस कर लेना, बाबा ये तन भी तेरा, तो मैं बच गई चमकती हुई आत्मा, अब मैं आई आपके पास, तन यही समर्पित कर दिया उसको, बच गई निराकार आत्मा, उड़ चली बाबा के पास। मन की समर्पणता ऐसी हो कि हमारे मन का हर संकल्प बाबा को भोग लगाने जैसा हो, बाबा के महावाक्य हैं ये, हर संकल्प मन में जो उठ रहा है चेक कर लो, क्या वो ऐसा है जिसका भोग बाबा स्वीकार कर ले। और अभी मुरली में आ चुका संदेह को, क्योंकि बाबा परम सत्य है, याद करो, चलो संदेह, पिछले संदेह शायद आया है, संदेह तो अभी था ना कल, पिछले संदेह आया है, परम सत्य को केवल सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी कुछ नहीं। तो हम चेक करेंगे हमारे संकल्प प्रभु को स्वीकार्य हैं। जिसके पास जो कुछ भी है समर्पित हैं, फिर भी तो बहुत कुछ है ना, जो समर्पित नहीं है उनके पास भी बहुत कुछ है। मन से ये फीलिंग दे दो, ये सब कुछ बाबा का है, जैसे बाबा हमारी पालना कर रहा है, सब कुछ तेरा है। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा, जब वो सब कुछ जाएगा उन्हें बहुत कष्ट होगा, मेरा सब कुछ चला गया। अब जिन्होंने समर्पित भाव अपना लिया उनका मेरा जाएगा ही नहीं। बहुत अच्छी आवाज बाबा की सुनते रहें, हम कहेंगे बाबा मेरा सब कुछ तेरा। ऊपर से बाबा आवाज कर रहा है, बच्चे क्या मेरा सब कुछ तेरा, ये स्वर्ग की बादशाही तेरी, मेरा संपूर्ण प्यार तेरा, मेरे सारे वरदान और शक्तियां तुम्हारी। ये आवाज आएगी, सुनते रहें हम इसको, बहुत गुड फीलिंग होगी कि बाबा ऊपर से कह रहा है मेरा सब कुछ तेरा। तो दिल से हम भी ये आवाज निकालेंगे, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस मैंने भी तब से सीखी जब दादी ने शरीर छोड़ा और बाबा ने संदेश दिया कि दादी का जन्म कहाँ हुआ है। जगह नहीं बताई थी पर कुछ लक्षण बताए थे। ऐसा भक्त जो लंबे काल से एक पुत्र की कामना कर रहा था, भक्ति करता था, और वो पानी भी प्रभु अर्पण करके पीते हैं। देखो भगवान को भक्तों की समर्पणता भी स्वीकार्य होती है। हम भी जो कुछ खाएं पिए बाबा को अर्पित किया करें। भोजन खाते समय तीन विधि अपना लें, बहुत अच्छा रहेगा, ये सभी इसको अपनाते रहें। पहले तो भोजन को दृष्टि देके कम से कम 3 से 5 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में समा जाएं। पानी है तो 2 बार कर लें। फिर प्रकृति को भी धन्यवाद दें, तुमने हमें ये बहुत सुंदर जीवन दायिनी भोजन दिया है। भोजन जीवन देने वाला है ना, तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये शुक्रिया की गति भी ख्याल रहे, जिस चीज के लिए हम शुक्रिया करते हैं उसकी प्राप्ति हमें सहज होने लगती है। फिर अपने भोजन को बाबा को अर्पित कर दें, तुम स्वीकार करो पहले, तुम्हारे भंडारे का ये ब्रह्मा भोजन है, आप इसे स्वीकार करो। फिर स्वीकार करें, इसमें भले ही 1 मिनट लगा दें आप, बहुत अच्छा अनुभव होगा इससे। तो प्रैक्टिकल में सब कुछ समर्पित करने की आदत डालें। मैं सिखाता हूँ सबको, मैंने भी 2 छोटी कन्याओं से सीखा ये जो सेंटर में रहती हैं, कि जो भी उनके पास आता है वो बाबा के कमरे में बाबा के आगे रख देती हैं, पहले बाबा तुमको अर्पित। एक सेंटर ने तो ऐसे किया कि जो भी किसी को देना है वो बहनों को देना ही नहीं है, बाबा के कमरे में बाबा के आगे रखना है। तो बहुत चीजें आती हैं, बहनों को भी नहीं पता कहाँ से आई और देने वाले को भी यही फीलिंग बाबा को दे आए। तो सभी ये छोटी सी विधि अपनाएंगे, जो नौकरी धंधों में हैं, पैसा आए बाबा के आगे रख दो। माताएं शुरू करें, सब्जी भी लाएं, बाबा के आगे रख दो थैली, तुम्हें अर्पित, अब तुम्हारी ओर से हम खाएंगे। दवाई भी लाओ ना, हंसी की बात है, रख दो बाबा के आगे, बाबा इसमें ऐसी ताकत भर दो इसको खाते ही हम निरोग हो जाएं, फिर खाएं तो लगेगा बाबा हमें ड्राई फ्रूट खिला रहे हैं। ये समर्पण भाव सब कुछ तेरा हमें बहुत काम आएगा। पसंद है, सबसे सूक्ष्म है कर्म, सूक्ष्म तो मन बुद्धि का समर्पण भी है, पर कर्म और उसके परिणाम को समर्पित करना। परिणाम अपनी सूक्ष्म इच्छाओं को समर्पित कर देना। बहुत संसार में लोग एक चीज के पीछे भटकते रहते हैं, कौन सी है वो? मान, मान सम्मान और कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं। अपनी सभी कामनाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, अपनी सभी इच्छाओं को और अपनी मान की इच्छा को भी प्रभु अर्पण कर देने से कितना मान मिलेगा हमें? बोलो रामू, कितना मान मिलेगा? सारा संसार सम्मान देने की इंतजार करेगा। बाबा ने कह दिया है, जैसे देवियों के मंदिरों में भक्तगण द्वार खुलने की इंतजार करते हैं ना, देवियों को हाथ जोड़ने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, वही सीन यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन उनके सामने जिन्होंने मान की इच्छा को, छोटी मोटी जो संसारिक इच्छाएं हैं, उनको प्रभु अर्पित कर दिया, त्याग से भी सुंदर स्थिति है प्रभु अर्पण। तो बाबा के भी प्यार के हम पात्र बन जाते हैं और सारा संसार भी हमें सम्मान देगा। बहुत ध्यान देना है इस पर, कर्मों के परिणाम को समर्पित। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे सभी इसकी, जो भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं वो इसको आज से बहुत अच्छी प्रैक्टिस में ले आए। कैसे? जो अच्छी चीजें हैं पहले उन्हें समर्पित करेंगे। देखिए अच्छी चीजें क्या होती हैं, हमने कोई बहुत अच्छी सेवा की, हमें सफलता मिली, हमारी महिमा हो गई बहुत, सब समर्पित। आपने बहुत अच्छा धंधा किया, आपको अच्छा लाभ हो गया, तुमको अर्पित। जीत हो गई, सफलता हो गई, तुमको अर्पित। इसमें हमें बहुत सुंदर फीलिंग्स होंगी, जीत का अहंकार नहीं आएगा, सफलता का भी सूक्ष्म अभिमान नहीं आएगा और हम बाबा के बहुत समीप रहेंगे। एक सफलता को बाबा पर अर्पित करेंगे तो बाबा अनेक सफलताओं के द्वार खोल देगा। जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे। पहले ये अच्छी चीज, पॉजिटिव चीज समर्पित करें और फिर करेंगे अभ्यास निगेटिव चीज का।
सवेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा
जो बंद द्वार हैं वो खुल जाएंगे। पहले ये अच्छी चीज पॉजिटिव चीज समर्पित करें और फिर करेंगे अभ्यास निगेटिव चीज का जो थोड़ा कठिन है। हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया सेवाओं का, शिविर अरेंज किए, बहुत लोग आए लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। हमें लगा असफलता हो गई, पैसा भी खर्च हुआ, मेहनत भी हुई, हम सफल नहीं हुए, लेकिन इसको भी बाबा को अर्पित। हमने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को हमारी महिमा करनी चाहिए थी, पर दो ने महिमा की, दस ने बुराई कर दी। हम कहेंगे कैसे लोग हैं, बड़ी ईर्ष्या है इनमें तो, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे उस ग्लानि को भी ऊपर, नीचे रखो ही नहीं, चलो ऊपर किक कर दो, ऊपर चलो। वो ग्लानि बाबा के पास जाके क्या बन के वापिस आ जाएंगे, बाबा महिमा के पुष्प बरसाएगा। हार हो गई उसे भी स्वीकार करके प्रभु अर्पण, निंदा कर दी किसी ने प्रभु अर्पण। और एक बहुत अच्छी चीज प्रैक्टिस करेंगे, पसंद है ना ये प्रैक्टिस, सभी इसकी शुरुआत कर दें। देखिए जीवन में एक बहुत अच्छी अपनी नेचर बनाए सभी, महान लक्ष्य रखना सबसे सुंदर बात है। लेकिन हमने महान लक्ष्य रखा, उसको पाने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, लेकिन प्राप्ति कम हुई। उदाहरण एक ले लें, अभी एग्जाम्स हुए, रिजल्ट आई है। मान लो किसी लड़के ने लक्ष्य रखा था मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, 95 लाने। आजकल सीबीएसई में बहुत मार्क्स आते हैं ना, एक का आज था 99.54 पता नहीं कुछ, इतने फुल नंबर 100% हो गए। तो मान लो किसी ने लक्ष्य रखा था 95% मुझे मार्क्स लाने हैं, बहुत मेहनत की, उसने रात दिन एक कर दिया, नींद भी कम की, भोजन छोड़ा, टीवी नहीं देखी, खेल नहीं देखे, किए नहीं, बहुत मेहनत की, इस उमंग में वो था कि 95 आएंगे, लेकिन गड़बड़ हो गई, 92 आए। अब मनोस्थिति का पेपर है कि वो उदास हो जाए या वो इसे स्वीकार करके एंजॉय करे 92% को। 92% कम तो नहीं ना, जो बच्चे पास हो गए होंगे वो कितने खुश होंगे, चाहे 45% आए, खुश होते हैं ना। किसी की बैक आ जाती है, सप्लीमेंट्री आ गई, और कुछ हो गया, एक सब्जेक्ट में कम रह गए, चलो ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया, खुश हो रहे हैं, और ये 92 लाकर उदास बैठे हैं क्योंकि 95 आने चाहिए थे। मम्मी भी कह रही बहुत कम रह गए तुम्हारे नंबर तो। ये नहीं, टारगेट हाईएस्ट होने के बाद जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके, उसे एंजॉय करके आगे बढ़ना, ये अपनी नेचर सभी बनाएंगे। ये कुछ बहुत प्रैक्टिकल करने की बातें हैं, इस पर हम सभी ध्यान देंगे। ये तो मैंने स्टूडेंट की बात कही, जीवन के हर फील्ड में माताओं ने भोजन बहुत अच्छा बनाया लेकिन खाने वालों ने नाक चढ़ा दी, मजा ही नहीं आया। बेचारे ने बड़ी मेहनत की थी, 4 घंटे लगाए, समोसे अच्छे बनाए, सब कुछ, अब इसे स्वीकार करके प्रभु अर्पण करके आगे बढ़े। ऐसे नहीं ग्लानि सुन के थकान हो जाए, रात को नींद भी ना आए। टारगेट हाईएस्ट बनाना बहुत अच्छी बात, लेकिन जो परिणाम मिले उसको स्वीकार करना उससे भी सुंदर बात है। सभी इन चारों चीजों का बहुत अच्छा अभ्यास आज से करेंगे। अब योग का चार्ट किसी का भी 4 घंटे से कम न हो। मैं सुना दूं, एक बहन आई मेरे पास परसों से पहले, एक दिन पहले आई, अच्छा पुरुषार्थ करती है माता है वो छोटी आयु की। मैंने उससे पूछा, कुछ बात पूछने आई थी, योग कितना है? कहा 4-5 घंटे होता है मेरा। मैंने कहा 4-5 घंटे होता है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसको कहा थोड़ा आगे बढ़ा दो। कहा मैं तो 10 घंटे कर सकती हूँ। मैं उसको देख रहा था कि सचमुच उसमें योगी बनने के सारे लक्षण हैं। कहा मैं तो बहुत जल्दी 9 घंटे, पता नहीं 9 से क्यों अच्छा लग रहा था, मैं तो 9 घंटे कर दूंगी, बहुत अच्छा चार, 2 बच्चे भी हैं उसको। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सभी तीव्र पुरुषार्थी अपने चार्ट को 4, 6, 8 तक ले चलें, सुंदर समय चल रहा है, हमें संसार को बहुत कुछ देना है। बस याद रखेंगे, संसार की सभी आत्माएं महान आत्माओं का इंतजार कर रही हैं। ओम चंद्र।